السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. قیامت کا دن سخت مشکل ترین دن ہے، جس کو قرآن کریم میں یوم ثقیلہ کہا گیا، بھاری دن. اور اگر اس کا ذرا سا بھی اندازہ ہمیں اس دنیا میں ہو جائے تو ہم سب کچھ بھول کے بس اس کی فکر میں لگ جائیں، اور ہماری ایک ہی پریشانی ہو کے حساب کیسے دیں گے. خاص طور پہ ہم جو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جس میں امت محمدیہ بے دردی سے ذبح کی جا رہی ہے، اور جو ظلم سہ رہے ہیں وہ اس قدر برے حالات میں ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں. بعض تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو وہ تو جنت کی چڑیاں بن گئے. وہ معصوم بچے، وہ معصوم عورتیں، وہ بوڑھے، وہ نوجوان. لیکن جو زندہ رہ گئے اور بھوک اور پیاس میں بلبلا رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ان کے دل بھی غم سے پھٹ رہے ہیں، اپنے پیاروں کے غم اور اپنے قریبی لوگوں کے درد دیکھ کے، بعض کو جدائی کا غم ہے، بعض کو کسی پیارے کے اعضاء کے کٹ جانے کا، بعض جل گئے ہیں، بعض اپنی اولاد کو بھوکا پیاسا دیکھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ایسے وقت میں ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، افطار کے اندر ہمارے سامنے 10 طرح کی ڈشز پڑی ہوتی ہیں، سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے، جس کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اس کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھ سے مطالبہ پھر کتنے کا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں اس کا حساب اتنا کم ہے. ایک فقیر کا، ایک غریب کا، یا ایک لوٹے ہوئے لوگوں کا جن کے پاس گھر بار نہیں، جن کے اوپر دنیا میں اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے جانے محفوظ نہیں، ان کے پیارے محفوظ نہیں، ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہیں، ان کے پاس امن و امان نہیں، سب کچھ ان کا لٹ گیا، ان کا حساب کم ہے. ان کا حساب زیادہ ہے جو اچھے بھلے گھروں میں بیٹھے ہوئے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، امن و امان سے رہ رہے ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، چین کی نیند سوتے ہیں، اور اس کے باوجود عمل میں پیچھے ہیں. یاد رکھیے، قیامت کے دن حساب کتاب بہت ہی سخت ہے. اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو دنیا کا ہر غم ہمارے لیے ہلکا ہو جائے گا، کوئی پریشانی پریشانی نہیں رہے گی. اس لیے کہ آخرت کا غم جس کو لگ جاتا ہے، یہ دنیا کے سارے غم بہت عارضی لگتے ہیں اور بہت چھوٹے لگتے ہیں. اس لیے کہ آخرت کا غم بھی، وہاں کا جو وہاں کی پریشانی ہے وہ بھی بہت سخت ہے اور ہمیشہ کا بھی ہے. اس کے باوجود ہم اس کو اگنور کیے رکھتے ہیں، سوچنا نہیں چاہتے زیادہ. اور وہ چیز جو اٹل ہے، ایسی چیز ہے جو 100% کنفرم ہے، اسی کو ہم پس پشت ڈالے رکھتے ہیں. یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں، مگر ہمیں शायद इसका यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो मौत के बाद की जिंदगी हमारी पहली तरजीह होती। अगर यकीन होता तो जितने भी गम हैं दुनिया के, हम इनमें ना जीते, आखरत के गमों में जीते। जितनी भी परेशानियां यहां की, ये हमें बड़ी ना लगती, आखरत की परेशानी बड़ी लगती। ये जिंदगी मुख्तसर है, यहाँ के हर दर्द की दवा है, और जिस दर्द की दवा यहाँ पे नहीं है, वो दर्द भी इस जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाएगा। मगर क्या करेंगे उस दर्द का जो कभी खत्म नहीं होगा, उस गम का जो कभी मिटेगा नहीं। लिहाजा वहां जाकर जो चीज काम आने वाली है, उसकी फिक्र की जरूरत है। अगर उसकी फिक्र आज ना की, तो कल रोते भी रहे उस पे, तो कोई फायदा ना होगा। वहां पर एक ही चीज है जिसकी हमें फिक्र होनी चाहिए, कि मैंने वहां के लिए कितने नेक अमल किए और मैं कितना गुनाहों से बची हूं। सिर्फ नेकियां जमा करना काफी नहीं, गुनाहों से बचना भी जरूरी है। हमारे गम क्या है आज? बच्चों के, घरों के, बिल्स के, जॉब्स के, जिसका बिजनेस है उसके बिजनेस के, सियासत का गम, करियर के मसले, एजुकेशन में है तो इम्तिहानात की परेशानी, बदअमनी या बीमारी की तकलीफ, या किसी प्यारे की जुदाई का गम, महंगाई की परेशानी, या बच्चों की फीस देने की परेशानी। बस यही भाग दौड़ और यही टेंशन, यही फिक्रें हमें लिए बैठी हुई। हालांकि इनमें से हर आफत, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी, सिवाय इसके एक मुसीबत है जो खत्म नहीं होगी, और वो ये कि अमल अगर कम हो गया, नेकियां अगर मीजान में हल्की हो गई, और गुनाहों का पलड़ा अगर भारी हो गया। यकीन जाने, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू दिस। बाकी हर चीज बेमानी हो जाती है, हर चीज बेवकत हो जाती है, इसकी इतनी भी हैसियत नहीं कि जितनी जिंदगी में किसी छोटी सी चीज की हैसियत होती है, इतनी भी हैसियत नहीं। लेकिन इसके पीछे हम अपनी सारी जिंदगी घुला देते। अगर वाकई इनमें से किसी गम की जरा भी वैल्यू होती, ये जो परेशानियां, ये जो हमारे स्ट्रेसेस हैं, एंग्जाइटीज हैं, डिप्रेशंस हैं, अगर इनकी जरा भी अहमियत होती ना, तो मरते वक्त इंसान कहता, आए बस मेरा ये गम दूर हो जाए। मगर जैसे हम सूरह मोमिनून में देखते हैं कि जब एक इंसान को मौत आती है, तो वो क्या कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया में भेज कि मैं कुछ नेकियां कमा लूं, मैं कुछ अमल कर लूं। वो ये क्यों नहीं कहता कि अच्छा है, मेरे तो सारे गम दूर हो गए, और या मैं दुनिया में जाऊं तो हंसी खुशी थोड़े दिन काट लूं। वो ये क्यों नहीं कहता? अगर ये इतना ही अहम होता, तो उसको तो ये कहना चाहिए था कि मेरे गम दूर हो जाएं। मगर वो कहता है कि मैं कुछ अमल कर लूं। इसका मतलब सबसे ज्यादा अहम चीज ये अमल ही है, जिसका आज मौका मुझे और आपको मिला हुआ है, और अल्लाह ताला ने ये रमजान जैसी नेमत हमें अता की है, जिसमें हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं, अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। मगर फिर भी हम इसमें अगर कोताही करें, तो क्या होगा उस दिन, जिस दिन फिर कोई काम ना आएगा। खुद को कभी कभी उस जगह पर खड़ा करके देखा करें, उस माहौल को अपने ऊपर तारी किया करें कि मैं हशर के मैदान में खड़ी हुई हूं, मेरे आमाल एक तरफ है, एक तरफ जहन्नुम सुलग रही है, चीख रही है, गुस्से से आपे से बाहर हो रही है, और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना शौहर, ना औलाद, कोई भी नहीं है। सब पता नहीं कहाँ गुम है और मैं तने तनहा हूं और मुझे मेरे गुनाह नजर आ रहे। ऐसे में मुझे कौन बचाएगा? मुझे बचाने वाला कोई नहीं। और जिसने मेरे लिए फैसला करना है, जिसकी अदालत लगी हुई है, वो फैसला करने वाला मेरे अंदर और बाहर को जानता है। वो जानता है कि मैं क्या करके आई हूं और उससे कोई झूठ नहीं बोला जा सकता, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। और मेरी सारी किताब मेरे सामने खुली पड़ी हुई है, जिसमें हर छोटी और हर बड़ी बात तहरीर है। अब मैं क्या करूंगी? देखिए अपनी किताब की तरफ, सोचें अब मैं क्या करूंगी। क्या उस वक्त दिल नहीं करेगा वापस जाऊं और जल्दी से इसमें और नेकियां भर लूं? लेकिन अब तो वक्त खत्म हो चुका, अब वक्त नहीं है। फिर उसके बाद यहां पर आकर और नेकियां करना शुरू कर दें और गुनाहों से बचना शुरू कर दें और तौबा करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी वक्त है। अभी हम हशर के मैदान में नहीं खड़े हुए, अभी वक्त है, अभी हम कर सकते हैं। तो सुस्ती ना करिए, इस वक्त को कीमती जानी है। वरना अगर एक दफा फैसला आ गया कि फलां बिन फलां के लिए जहन्नुम है, फलां बिनते फलां के लिए जहन्नुम है, वो नाकाम हो गई है, तो फिर कोई कामयाबी कामयाबी नहीं है। चाहे यहाँ पे जितनी भी डिग्रियां ली हो, यहाँ पे कितनी भी कामयाब इंसान कहलाते हो, ये कामयाबियां कुछ भी हैसियत नहीं रखती। हर चीज मल्टीप्लाई विद जीरो हो जाती है मौत के आने के साथ। इस दुनिया की कोई भी चीज है, चाहे शोहरत है, दौलत है, चाहे बड़े बड़े घर हैं, चाहे गाड़ियां हैं, चाहे बड़े ओहदे हैं, चाहे बहुत बड़ी फॉलोइंग है, हर चीज मल्टीप्लाई विद जीरो। और जीरो से, सिफर से जो चीज जरब खा जाए वो सिफर होती है। इस दुनिया की हर चीज सिफर हो जानी है, जीरो, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हम हलकान हैं इसके पीछे, ये कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा क्यों ना अपने आप को वहां खड़ा करके और अपना खुद हिसाब करें, कितना कुछ है, क्या मेरा नेकियों का पलड़ा भारी हो रहा है या हल्का है, इसमें और क्या डालूं, अभी इसमें और कितनी गुंजाइश है, अभी और कितना भरना है, क्या नेकियों और बुराइयों के पलड़े बराबर हैं, क्या नेकियों का पलड़ा भारी है बुराइयों से, क्या सिचुएशन है, क्या हालात है मेरे। अगर एक नेकी भी उस दिन कम हो गई, एक नेकी तो कोई भी बड़ी चीज नहीं है ना, लेकिन वहां पे है, वहां पे है, यहां पे तो बहुत सारी नेकियां बिखरी रहती हैं हमारे सामने, हम इग्नोर करते हैं, तो क्या हो गया अगर नहीं भी की तो? फर्ज है क्या? नहीं, फर्ज तो नहीं है, तो फिर छोड़ो, इग्नोर। वहां पे इग्नोर नहीं होगी ना, वहां पे एक एक नेकी का जर्रे के बराबर, मैं ये अमल मिसकाला जर्रतिन खैर यरा व मैं ये अमल मिसकाला जर्रतिन शर यरा, एक जर्रे के बराबर नेकी भी दिखा दी जाएगी और एक जर्रे के बराबर बुराई भी, गुनाह भी इंसान देख लेगा। यहाँ पे गुनाह की कोई हैसियत नहीं और गुनाह ज्यादा याद भी नहीं आते। कोई बड़े बड़े याद आते होंगे, मैं छोटे छोटे तो बिल्कुल नहीं आते, और कितने गुनाह करते भी जा रहे हैं तो उनका एहसास ही नहीं है। वहां पे जर्रे के बराबर भी गुनाह अगर तुलने लगे तो क्या हाल होगा? एक नजर भी उठी हराम की तरफ तो वो भी तुल रही है, एक बात भी जो गलत सुनी, जो हराम थी सुनना, वो भी तुल रहा है अमल, एक बात भी जुबान से जो बोली वो भी तुल रही है, एक कदम भी जो उठा बुराई की तरफ वो भी तुल रहा है। तो ये तुलनी है, एक एक चीज हम जिसको कहते ना लो, अल्लाह ताला क्या बस इतनी छोटी छोटी चीजों का हिसाब करेगा? जी हाँ, छोटी छोटी चीज भी रखी जाएगी, कोई छोटी चीज से ही नाकाम हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, इसलिए कि एक गुनाह जो बुराई के पलड़े में डाला गया, उसी की वजह से गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। सिर्फ एक गुनाह उधर ज्यादा हो गया या एक नेकी इधर कम हो गई तो इंसान गया, काम से गया वो। इसकी फिक्र नहीं होती, इससे दिल नहीं फटता, इससे रातों को बेचैनी नहीं होती। तो सोचें इस बात को कि मेरे लिए एक एक गुनाह बड़ा है और एक एक नेकी कीमती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेकी को हकीर ना जानो, छोटी से छोटी नेकी को भी ये ना समझो तो क्या हो गया। हर नेकी बहुत कीमती है, तो इन गुनाहों को भी छोटा ना समझे। गुनाहों के अंबार जब लगते हैं ना, तो भी देखे छोटे छोटे तिनके भी आप जमा करने लगे, उनको भी बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो एक बड़ी ढेरी बन जाएगी। इसी तरह गुनाह भी करते 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 कितने ही ज्यादा हो सकते हैं। इमाम इब्ने बत्ताल लिखते हैं शरह बुखारी में कि जो बहुत ज्यादा गुनाहगार हो और वो चाहता हो कि बगैर थकावट के अल्लाह ताला इन गुनाहों को खत्म कर दे, तो वो नमाज के बाद अपनी जाय नमाज को लाजिम पकड़ ले ताकि वो अपने लिए फरिश्तों की दुआओं और इस्तिग़फ़ार कसरत से हासिल कर ले। यानी फिर उसको चाहिए कि वो जाय नमाज से ना उठे, जाय नमाज पे ही बैठा रहे, क्योंकि वो जितनी देर आप बैठे रहेंगे फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। खुद भी अपने लिए करें, फरिश्तों की इस्तिग़फ़ार भी हासिल करें। और आज एक इसी तरह का जिक्र आपने सामने रखना चाहती हूँ, जिससे भी गुनाहों की बख्शीश हो जाती है और वो रात को किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सोने को जाओ तो एक दुआ सिखा दी कि ये दुआ या ये जिक्र कर लिया करो, इससे गुनाह माफ हो जाते हैं, हत्ता कि अगर वो समंदर की झाग के बराबर हो तब भी माफ हो जाते हैं। और इन्हीं के अंदर वो कलिमा है जो मैं आपको रोजाना याद दिला रही हूँ, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वो कलिमा भी इसके अंदर है और इसके अलावा भी है। तो अगर आप ये कह देंगे रात के वक्त, जब भी सोने को जाने लगे या जब भी रात को आपकी आंख खुले आप ये कह देंगे, तो समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह माफ हो सकते हैं। गुनाहों को माफ करवाना है हमने इस महीने में और इसके लिए मेहनत करनी है। तो क्या है ये कलिमा? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो पहला वाला भी आपको आता है, ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर ये दूसरा वाला भी आपको आता है, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई इसमें मुश्किल नहीं है जो कि ना किसी को आता हो। और तीसरा, देखो तीन पार्ट्स हैं इसके, इस तरह से आप याद रखें। तो पहला भी मैंने आपको बता दिया, दूसरा भी, और तीसरा पार्ट क्या है जो मैं आपको रोजाना याद दिला रही हूँ, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तीनों को कहेंगे आप तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। इसलिए गुनाहों की बख्शिश करवानी लाजिम है इस महीने के अंदर। ऐसी तमाम चीजों से बचें जो अल्लाह ताला के गजब का बाइस बन सकती हैं इस महीने में, ऐसी तमाम बातों से बचें, खास तौर पे जुबान के इस्तेमाल से। जुबान का इस्तेमाल इंसान को बाज दफा बहुत नीचे गहराई में ले जाता है, बहुत नीचे जहन्नुम में ले जाता है। एक कलमा ही कहा हुआ अल्लाह ताला को नापसंद आ जाए तो बहुत नीचे ले जा सकता है। तो कोई जुबान से बड़ाई की बात, अपनी नेकियों की शेखियां ये मारने की जरूरत नहीं है, कि वो शेखियां बिगाड़ने लगे कि मैंने तो इतने कुरान खत्म कर लिए, मैं तो ऐसे कर रही हूं, मैं तो ये कर रही, इसकी कोई जरूरत नहीं। बल्कि खुद को ऑलवेज यही समझे, हमेशा ऐसे ही समझे कि मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं है क्या, पता कि मीजान में कौन सी नेकी वाकई उसका कोई वजन भी है या नहीं, या यहीं पे एहसान जता के हमने उसको जाया तो नहीं कर दिया, रियाकारी करके जाया तो नहीं कर दिया, तो क्या मालूम हमें वो कबूल भी हुई है कि नहीं हुई, या हमने बाद में कुछ ऐसा काम तो नहीं कर दिया जिससे वो जाया हो गई हो, मिट गई हो। तो फिर हम क्यों शेखियां बिगाड़े? जब तक वहां जाकर कोई पास नहीं हो जाता उस वक्त तक वो सेफ नहीं है, बिलीव मी, उस वक्त तक हम में से कोई सेफ नहीं है, चाहे बोलने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे कोई उस्ताद है या शागिर्द है, चाहे कोई बहुत बड़ा आलिम दीन है या कोई कम इल्म वाला है, कोई भी महफूज नहीं जब तक वो इस दुनिया की सरहद से ईमान को लेकर ना चला जाए, जब तक वहां उसके लिए ऐलान ना हो जाए कि ये कामयाब हो गया, अब ये कभी नाकाम नहीं होगा, तब तक हम में से कोई महफूज नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा आखिरी वक्त कैसा होगा, हम नहीं जानते कि उस वक्त हमें कलमा नसीब होगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते कि उस वक्त हमारी ईमान की हालत क्या होगी। इसीलिए बहुत दुआओं की जरूरत है कि हम ये मांगते रहें कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने आपको ये दुआ भी बताई थी कुछ दिन पहले, इस दुआ को मांगते रहिए, खात्मे बिल खैर की रो रो के दुआएं करें, क्योंकि हमें क्या पता आज हम इस हालत में हैं, कल को हमारे दिल की क्या हालत होती है, और ये दिल हमेशा उलट पुलट होता रहता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखा दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कसरत से दुआ को मांगा करते थे, तो हमें भी ये दुआ याद कर लेनी है और मांगते रहना है। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी आला दीनिक, ए दिलों को उलट फेर करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर मजबूत कर दे अल्लाह, साबित कर दे अल्लाह, मेरा दिल हिले नहीं, क्योंकि दिल का क्या पता है, आज नेकी की तरफ है, कल कोई किस तरफ उलट जाए, किसी की अल्लाह ना करे बातों में आ जाए, कोई गुमराही का रास्ता ना इख्तियार कर ले, तो अपने आप को हमेशा खतरे में समझें, हमेशा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं करते रहें अपने अंजाम के लिए, हमेशा आखरत के लिए दुआएं करते रहें। देखिए दुनिया के लिए भी आप दुआएं कीजिए, कोई आपको नहीं रोकता, हमने दुनिया भी अल्लाह ही से लेनी है, दुनिया की हसना भी हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, लेकिन आखरत की हसना भी मांगा करें, उसकी भी फिक्र किया करें, उसके भी एक एक स्टेप को मांगे कि अल्लाह ताला यहाँ पे भी आसानी कर देना, यहाँ पे भी कब्र में भी आसानी कर देना, हशर में भी, या पुल सिरात पे भी, मीजान पे भी, या अल्लाह जब किताबें थमाई जाएं हाथों के अंदर उस वक्त भी मेरे दाहिने हाथ में किताब देना। तो बहुत सारे मरहले आज आगे जो बहुत मुश्किल हैं, इतने आसान नहीं, हम तो दुनिया की मुश्किलों को सह के और ये सोचते हैं कि कितने मुश्किल हालात में मैं हूँ, जरा सा किसी के ऊपर जरा परेशानी आ जाए वो सोचता है कि हाय मुझसे ज्यादा कोई मुश्किल में है ही नहीं, ये तो छोटी छोटी तकलीफें, आखरत की तकलीफ के आगे ये कुछ भी नहीं है, ये दुनिया के गम कुछ भी नहीं है, इनको हमने बड़ा बनाया हुआ है, ये तो कुछ भी बड़े नहीं, जो आखरत के गम बड़े हैं, जो आखरत की तकलीफें बड़ी हैं, उनकी फिक्र अपने अंदर पैदा करें, उनकी तरफ ध्यान रखा करें, आप देखेंगे आपके ये दुनिया के गम भी हल्के हो जाएंगे और आखरत के लिए दुआएं भी दिल से निकलेंगी, फिर ये नहीं कि कोई रटी रटाई दुआएं या किताब पकड़ ली और बस एक एक करके सारी दुआएं मांगने लग गए, नहीं, बल्कि दिल से मांगे, खुद को वहां पे हाजिर करके मांगे, और ये सोच लिया करें कभी कभी कि अगर मेरे लिए वहां पे फैसला हो गया है मसलन कि इसकी बदियां इसके गुनाह बढ़ गए हैं और नेकी कम हो गई है तो क्या होगा मेरा, और फिर रोएं, अगर रोना नहीं आ रहा तो इसका मतलब दिल सख्त हो गया है, फिर अल्लाह ताला से दिल की नरमी मांगे, क्योंकि फिर सीने में दिल नहीं है, फिर पत्थर है, अगर अपने अंजाम से भी रोना नहीं आता, अगर इस चीज से रोना नहीं आता कि मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ी होंगी। जितनी नेमतें मेरे पास हैं, बहुत सारे लोग उनसे महरूम हैं। मुझसे मेरा रब सवाल करेगा इन नेमतों के बारे में कि तुम्हें तो इतना कुछ दिया हुआ था। और यह हदीस में आता है कि इंसान को खड़ा करके कहा जाएगा, तुम्हें ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, देख बताओ तुमने क्या किया। एक तफसील आती है, ये सवारियां दी, तुम्हें घर वाले दिए, तुम्हें ये चीजें, माल दौलत रिस्क और फरावानी, ये सब कुछ दिया। आप बताइए मेरे और आपके पास कितनी नेमतें, वो गिनवाई जाएं तो एक लंबी लिस्ट है। और उसके बाद हमसे पूछा जाए कि तुमने क्या किया, तो क्या कहेंगे? क्यों नहीं खुद को हाजिर करते अल्लाह की अदालत में यहां बैठे हुए? क्यों नहीं ये सोचते कि वहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं होगा मेरा? क्यों नहीं ये सोचते कि मैं क्या जवाब दूंगी? तो आज सोचना कारामद है, कल सोचना नाकामी है। लिहाजा आज सोचिए, हमारे लिए लम्हा फिक्री है। यही तो फर्क है एक मोमिन और एक काफिर में। मोमिन इस दुनिया में रह के आखरत में जीता है, इस दुनिया में रहता है लेकिन जीता वो आखरत में है। उसके सब हम और गम आखरत के होते हैं, उसका हर अमल आखरत के लिए होता है, उसकी हर फिक्र आखरत बन जाती है। वो उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है तो वहीं के लिए। उसको कोई जरर पहुंचाए तो वो खुश होता है कि मेरे गुनाह झड़ गए। उसके ऊपर कोई परेशानी आए तो वो यही सोचता है कि आखरत की परेशानियां अल्लाह ताला कम कर देगा इसके पीछे। उसकी कोई बुराई करे तो उसको गुस्सा नहीं आता, उसको ये खुशी होती है उसने अपनी नेकियां मुझे दे दी। वो तो रहता ही वहां है, वो तोलता यहां के मुताबिक नहीं है, वो आखरत के तराजू में तोलता रहता है हर अमल को यहां बैठे हुए। और इस तरह से वो अपनी आखरत को तामीर करता है, अपनी जन्नत बनाता है, जन्नत के घर की तैयारी करता है। लेकिन हम लोग अक्सर यहीं पे तोलते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसका ये बदला, उसने मुझे ये कह दिया, उसके साथ बात नहीं करूंगी, मेरे पर ये गम आ गया, बस दुनिया ही खत्म हो गई, ये परेशानी आई, बस लेके बैठ गए डिप्रेशन। तो हम यहां पे जीते हैं, कुछ लोग आखरत में जीते हैं। आखरत में जीना सीख लें, कम से कम इस महीने में हर अमल को फौरन आंखें बंद किया करें और वहां पे सोचा करें, मीजान में ये रख दिया, मेरे ऊपर ये परेशानी आई ना, ये मीजान में रख दी, उस दिन तो मैं खुश हो रही होंगी, शुक्र है ये परेशानी आई थी, इससे ही मेरे कई गुना झड़ गए, तो मैं वहां पे खुश हो रही होंगी इसी परेशानी पे जो मुझे आज लगी हुई है, जिसपे मैं आज इतनी गम मना रही हूं। कोई नुकसान हो गया, ओहो दुनिया का नुकसान है, कोई बात नहीं, इसके बदले में अल्लाह ताला आखरत में मुझे दे देगा। ओ फलाने ने मेरा हक मार लिया, चलो अच्छा है, वहां पे जाके इसकी नेकियां मुझे मिल जाएंगी। तो आखरत में रहना सीखें, कम से कम इस महीने में ये रिहर्सल करें कि वहां पे इस तरह से अपने आमाल को तोलना शुरू कर दें। जो भी हमारे साथ होता है, कुछ गमी, कुछ परेशानी आ रही है, कुछ फिक्र आ रही है, कोई नेकी कर रहे हैं या कोई गुनाह हो जा रहा है, वो सब तोलते जाएं, तोलते जाएं। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया दिल से निकलने लगेगी और आखरत दिल में बसने लगेगी। ये एक नुस्खा है, ये आजमा के देखिए। आपको यहाँ पे किसी चीज की परवाह नहीं रहेगी, जिस जिन चीजों के पीछे लोग हलकान हो रहे हैं ना, उनमें से किसी की भी परवाह नहीं रहेगी। जिन चीजों के ना मिलने पे यहाँ पे लोग इतने गमगीन हैं, आपको उनके ना मिलने का कोई गम नहीं लगेगा, आप बहुत मुतमईन इंसान हो जाएंगे। तो ये है दरअसल इस दुनिया में भी खुश रहने का एक जरिया, कि इंसान वहां जीना शुरू करते और फिर जब जाने का वक्त होगा तो कम से कम तैयारी पूरी होगी। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो एक तैयारी के साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी आखरत बनाने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।